इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो,
है इल्म अमल का कारवां यसो, है पाक वतन के पास बायसो।
बरसगीर में मौलाना मौदूदी के जरिए से एक आलमी, एक मुक्तदर इस्लाम का जो तसव्वुर, एक पॉलिटिकल और रियासती तसव्वुर उसका, जिसको वो निज़ाम कहते थे, यानी इस्लामी निज़ाम जिसको वो कहते थे, यानी निज़ाम से मुराद उनका पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये बातें भी मौजूद थी, किताबें में मौजूद थी, जिद्दोजहद भी मौजूद थी, लेकिन जो गुलगुला और बलबला इमाम खुमैनी के इनकलाब से पैदा हुआ वो इसको मानना पड़ेगा, और तारीख इसकी शहादत देती है कि वो पहले मौजूद नहीं था। तो इस तरह से आईएसओ भी एक नए फेज में जो है वो दाखिल हो गए, और आपसे मैं कह रहा हूं कि यानी शिया आम तौर पे इसको कबूल नहीं करते थे इस मूवमेंट को। हमें यहाँ के शियों से भी मार खाना पड़ी है कि भाई आप एक ऐसे एक जी हमारी एक ही शिया रियासत है तो आप उसके खिलाफ भी जो है इनको यानी कहते थे कि ये ब्लैक कम्युनिस्ट हैं, इनकी इमाम खुमैनी और उनके साथियों को, यानी इनकी इन लोगों को कहते थे ये कम्युनिस्ट लोग हैं, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो इस सारे सिनेरियो में आईएसओ का यानी नौजवान होकर भी खड़ा हो जाना और पूरे मुल्क में लोगों को मनवा लेना कि ये हक की एक तहरीक है जो इमाम खुमैनी के वजूद से बरपा हुई है, इसको बहुत बड़ी आप इसको समझें कि तब्दीली है, और आईएसओ इसकी नकीब रही है और अब भी इसकी नकीब है। इसका ये भी मतलब है कि अगर कुछ जवान तय कर लें कि हमने ये पैगाम बरहक है और हमने इसको लेके जो है वो आगे बढ़ना है, तो वो बहुत बड़ी तब्दीली का जरिया और वसीला जो है वो बन सकते हैं। और फिर उसके बाद ये नया दौर शुरू हुआ होता है जो बाद में मेरे साथी आएंगे बयान करेंगे। एक जाहिर है ये 80 में ही 79 में जो इस्लामाइजेशन का तसव्वुर आया, फिर जियाउल हक ने ऐसे कवानीन जो है उसको बनाया कि जिसको वैसे तो मौलाना मुफ्ती महमूद उस दौर में भी कहते थे ये फिके अनफी के भी मुताबिक दुरुस्त नहीं है, लेकिन उधर से मूवमेंट नहीं उठी, मूवमेंट जो है वो यहाँ से शियों की तरफ से उठी है। इसकी एक बड़ी जबरदस्त तारीख है कि इसके पीछे भी आईएसओ है, यानी मुफ्ती जाफर हुसैन की क्यादत के पीछे आईएसओ है। इसका मौका नहीं कि मैं इस वक्त इतनी तफसील मैं जा आपकी खिदमत बयान करूं। जब हमने उनसे कहा कि भैया आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं इस्तीफा दूंगा। तो फिर हमारी उनके साथ ये बात तय थी कि वो अगर कानून ऐसा बन गया कि जो शिया मकतब फिक्र जिसको कबूल नहीं करेगा, तो वो गुजरांवाला में रहते थे, उनसे तय पाया कि वो लाहौर आएंगे, फिर हम इसके लिए जो है वो आगे करेंगे। तो जब वो लाहौर आए, वो भी हमारे दोस्त उनको लेके आए, तो उन्होंने हमने कहा कि अब क्या करना है, तो आखिरकार ये तय पाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीच में बहुत सारी तफसीलात में हज़्फ कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। मैंने कहा आपका जो नजरिया है ना उसको लिख के हमें दे दें। उस वक्त साइक्लोस्टाइल होता था, वो हमने कापियां उसकी साइक्लोस्टाइल कर ली और जाके प्रेस को जो है वो दावत दी कि वो तशरीफ वो आए, और फिर वो मुफ्ती साहब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया, और यहाँ मुफ्ती साहब की शख्सियत जो है वो उभर के सामने आई एक शिया कायद के तौर पर। फिर उसके बाद एक नई तारीख जो है वो जन्म लेती है, और 1980 का फिर ये कन्वेंशन जो एक पाकिस्तान की तारीख में भी एक बहुत एक बड़ा मिसाली वो इवेंट था, और पूरी दुनिया की आलम इस्लाम की सियासी जो जद्दोजहद और उसके तरीक़ेकार और उसकी हिकमत अमली पे जो दानिशवर हैं, जो मुफक्करीन हैं, जब उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो इसको एक नमूने और मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन ये वो वायलेंस नहीं थी, ये जो अभी वाकयात हुए हैं इसमें वायलेंस, तशद्दुद, जुल्म दूसरों के साथ, ये कुछ हमारी किसी तहरीक में वायलेंस नहीं था, यानी तशद्दुद नहीं था, किसी के ऊपर हमला नहीं था, पुलिस के ऊपर हमला नहीं था। हमारी पूरी की पूरी तारीख में जो हमारी जद्दोजहद है वो उसमें तशद्दुद जो है वो कार फरमा नहीं रहा। और 1980 का इतना बड़ा कन्वेंशन है, हमारा जवान शहीद हुआ लेकिन हमने जवाबन किसी के ऊपर जो है वो हमला नहीं किया। बाज़ का हमारे भी जाहिर है कि जज्बाती जवान होते थे, उनके साथ के सामने हम खुद सीना तान के खड़े हो जाते थे। तो भारत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ से फिर है ये ISO की जो है वो उठान हुई, फिर उसका कैसे बना, फिर उसका दस्तूर कैसे बना, फिर उसकी तहरीक निफाज फिक्र जाफरिया कैसे मार्ज वजूद में आई, भक्कर में मुफ्ती साहब की क्यादत पर कैसे हमने 79 में जो वाकया हुआ भक्कर में जिसमें मुफ्ती साहब मरहूम को मुंतखब किया गया, वो इसी दौर की बातें हैं। और कैसे सबको उस एक क्यादत पे मुत्तफिक किया गया, इतनी इसकी तफसीलात हैं, आप हैरान होंगे कि उस क्यादत पर मुत्तफिक करने में भी ISO का बुनियादी किरदार है। अजीबो गरीब कहानियां हैं ISO की जो अभी सीने में महफूज हैं, जो अभी नहीं आई आपके सामने सारी की सारी। और कैसे फिर स्टेज के ऊपर जब एक मौलवी साहब ने शरारत करने की कोशिश की और तकसीम करने की कोशिश की, तो कैसे हमने उस पर काबू पाया, फिर ये नारा कैसे मार्ज वजूद में आया कि अपना पहले नारा ये था कि ये जो मुफ्ती जा एक की कायद एक की रहबर, पहले नारा था हमारा कायद हमारा रहबर मुफ्ती जाफर। लेकिन जब इख्तलाफ राय पैदा करने की कोशिश की तो इस नारे में हमने तब्दीली की एक की कायद एक की रहबर मुफ्ती जाफर। तो ये मुफ्ती जाफर की क्यादत पर इस कौम को जो है वो इकट्ठा किया गया। फिर उसके बाद अलामा शहीद आरिफ हुसैनी का दौर उनके बाद शुरू होता है, तो बाकी दोस्त बयान करेंगे, लेकिन ISO का बहुत बड़ा किरदार है उस सारे सिनारियों में। फिर हमारी नई तारीख रकम होती है, फिर उसके बाद शहादतों का सिलसिला, फिर उसके बाद एक नई। जो मैं बात कहना चाहता हूँ आखिर में माजी ISO का मुस्तकबिल माजी के दरीचे में, वो ये है कि ये 50 साल तारीख भी हम बयान कर सकते हैं, इस पे इफ्तखार भी कर सकते हैं, लेकिन आइंदा क्या हमारे अंदर ये अरमान मौजूद है कि हम मजीद इसको 50 साल आगे ले जाएंगे? क्या हम तैयार हैं इसके लिए कि हम आने वाली नस्लों को इससे बेहतर तंजीम देंगे? मेरा ख्याल ये है कि आपको ये ख्वाब देखना है और ये ख्वाब आने वाली नस्लों को दिखाना है। यहां से एक आप या तो ये कि आप इन्हीं फुट प्रिंट्स पे चलते रहें, या ये कि आप आज एक नई इश्तेहादी बसीरत, तंजीमी इश्तेहादी बसीरत, आलमी उफक पर नजर करके अपनी जिम्मेदारियों का असर से नो जायजा लें। क्या ये मुमकिन है कि हम इससे बेहतर किरदार अदा कर सके? मेरा ख्याल है कि जब BN बेहतर हो जाएगा गुंजाइश है। कहते हैं ना, पहले आसमान पर नबी पाक गए तो फलां नबी मिले, आ हजरत गए तो मेराज में, दूसरे पे गए तो दूसरे नबी मिले, तो तीसरे पे गए तो तीसरे एक और नबी मिले, सातवें पे इब्राहिम मिले, तो फिर उसके बाद भी फिर आप सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। तो जब आदमी एक मरहले पे होता है तो उसको लगता है कि शायद यही मेरी मुंतहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने सितारों को देखा तो कहा ये मेरा खुदा है, फिर चांद उसमें बड़ा था कहा ये इनमें बड़ा है, फिर वो डूब गए तो कहा ये डूबने वाला कैसे मेरा खुदा हो सकता, फिर सूरज निकल आया तो वो उससे बड़ा था। तो क्या ये मुमकिन है कि हम कोई इससे बड़ा ख्वाब देखें? मैं आपसे कहता हूँ हाँ, ये मुमकिन है। ये तब मुमकिन है कि ये हमारे जो साबिकीन हैं ये भी अपनी जगह पे सोचें, ISO के जो साथी हैं वो भी अपनी जगह पे सोचें कि क्या पाकिस्तान के अंदर फकत शियों की तरबियत करके हम हालात को बेहतर बना सकते हैं? जाहिर है कि ये जो इतनी बड़ी फिरकावारियत है और इतनी जो तकफीरियत, ठीक है हमने और हमारे बुजुर्गों ने जोर लगा के इसको जो है वो इसकी रोकथाम की है, लेकिन क्या लोगों के जेहन भी साफ हो गए हैं? क्या शरारतें करने वालों ने तर्क कर दिए हैं अपने इरादे? क्या शैतान को नींद आ गई है? क्या इबलीस ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है? क्या तागूती ताकतों की नजर पाकिस्तान पे नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसा जब नहीं है तो फिर आप महदूद रह के अपने इन्हीं हलकों के अंदर आप अपने मुस्तकबिल को محفوظ نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت بھی اسی طرح ان کے اندر بھی وسعت نظر ہو, ہمارے اندر بھی مزید وسعت نظر ہو, ہم مل کر اس ملک کو ایک آزاد ایک مقتدر اسلامی ریاست بنانے کا جو ہے وہ خواب دیکھیں. ہم یہ جو اس وقت پاکستان میں پوزیشن ہے کہ جی اب ہم چین جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا, امریکہ جو ہے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے وہ, یا ہمارے ادارے سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے, اب ہر کوئی چین کے کلمے پڑھنا شروع ہو گیا ہے, تو کیا ہم ایک غلامی سے نکل کے یہ پاکستان کو دوسری غلامی میں دے دیں گے؟ یہ چیزیں سوچنی ہیں, اور اگر آپ نے نہیں سوچنی تو پھر کس نے سوچنی ہے؟ آپ اس لیے سوچیں کہ یہ آپ کہتے ہیں, آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے, وہ آئے گا اور پوری دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اس کو عدل و قسط سے بھر دے گا. یہ آپ کا خواب نہیں, یہ آپ کا ارمان نہیں, یہ آپ کا ایمان ہے. جب آپ کا ایمان ہے تو آپ کے کاموں کو آپ کے پروگراموں کو بھی اسی ایمان کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اس کی تفسیر کے لیے ایک کا جملہ اور کہتا ہوں, پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیں کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والا ظالموں کے خلاف اٹھے گا, تو یہاں ہم نہیں کہتے کہ وہ کافر اور مسلمان کی بھی ہم تفریق نہیں کرتے, چاہے جائے کہ شیعہ سنی کی تفریق کرے, وہ ظالموں کے خلاف اٹھے گا. اپنا نام محمد حسین بے شک رکھ لے, اور وہ اگر ظالموں میں سے ہو یا ظالموں کا حامی ہو تو امام مہدی علیہ السلام اس کے خلاف ہی ہوں گے, اور اپنا نام کوئی اور رکھ لے اور وہ مظلوم ہوگا تو امام مہدی جو ہیں وہ اس کے سرپرست اور اس کے ولی ہوں گے. جب یہ ہے تو دنیا میں میرا خیال ہے وہ جو امام خمینی نے کہا تھا, مستضعفین اور مستکبرین میں جو ہے وہ تقسیم شدہ دنیا. ہمیں اس نظر سے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی دشمنیوں اور دوستیوں کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں آپ کی امید پیدا کرنے کے لیے اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک بدبخت نے بی بی فاطمہ تزارا سلام اللہ علیہا کی بے ادبی کی. آپ یہ دیکھیں کہ شیعوں نے اتنا رد عمل نہیں کیا جتنا اہل سنت نے کیا. کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سندھ اسمبلی نے اتفاق رائے سے اس کی مذمت کی اور اہل بیت کی محبت میں قرارداد منظور کی, اور ہماری پنجاب اسمبلی نے اس کی مذمت کی اور اتفاق رائے سے بی بی اور ان کے خانوادہ محترم کی جو ہے حمایت میں قرارداد منظور کی. آزاد کشمیر اسمبلی نے بھی اسی طرح سے اتفاق رائے سے اس کی مذمت کی اور اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنی قرارداد منظور. پاکستان کی قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے اسی طرح سے کام کیا, تو مجھے اس زمانے میں مجھے یوں لگتا تھا یہ پاکستان کشور زہرا ہے, یہ فاطمہ تو زہرا سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے. جب ایسا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے اتنی اس سرزمین میں گنجائش موجود ہے کہ نبی پاک اور ان کے آل اور اس کے خانوادہ پاک کے ساتھ ایسی جرت جو ہے نا وہ موجود ہے. جب اتنے متفقات جو ہے ہمارے اس سرزمین پہ موجود ہیں تو ہمیں اس کا مطلب ہے بات یہاں رہ گئی ہے کہ پھر ان کے سانچے کی طرف ڈھلنا ہے, دنیا کو ان کی نظروں سے دیکھنا ہے, مظلوم کی حمایت کے لیے آواز بلند کرنا ہے. بالکل اسی کو کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا ناصر ہونا اور ان کا مددگار ہونا. میں یہ آپ کے سامنے یہ نظریہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں یہ کہہ کے کہ اس پہ غور کیجئے گا. ہم ہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی بنیادیں رکھی ہیں, ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ خواب اس قوم کو اور اس جوانوں کو دکھایا ہے, اور ہم اس تبدیلی کو لے کے آئے ہیں اس ملک میں. انشاءاللہ امام عصر کی تائید اور حمایت سے ہم ہی ہیں جو آئندہ مزید روشن مستقبل کا خواب پیش کر رہے ہیں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تعبیر کے لیے ہم اور ہمارے بچے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.